करता है बाबा हम पाख तेरे उड़ आए, पाख तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नील गगन में जाए, पाख तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पाख तेरे उड़ आए, पाख तेरे उड़ आए। याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संगम तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
ओम शांति। तो जैसे आप सबने अभी अभी ये गीत सुना कि बाबा आप, दिल कहता है कि आपके वतन में उड़ करके चले आए, क्योंकि अब यह दुनिया भी सुखदाई नहीं है, दुखदाई है। इसलिए सबका दिल तो कहता है, लेकिन अगर हमारे संस्कार या हमारे अंदर कोई ऐसी निगेटिव बातें होंगी तो चाहते हुए भी हमारा दिल, हमारा मन ऊपर बाबा की तरफ नहीं उड़ेगा। तो आज हम अपने अंदर जो भी कुछ किचड़ा रहा हुआ है, जो भी कुछ उस वतन में उड़ने के लिए जो घातक, या बाबा हमारे साथ क्यों नहीं रहता, या बाबा के साथ रहने के लिए हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे अंदर के जो कड़े संस्कार वो हम कैसे निकालें, और पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ने के लिए हम किस बात का हम पुरुषार्थ करें जिससे हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चले, इसके ऊपर विषय चर्चा करेंगे। तो वैसे तो हमारे अंदर जो मुख्य जो कड़ा संस्कार है, उस कड़े संस्कार को सबसे पहले जानना जरूर, और विशेष हमें वर्तमान समय दो बातों का विशेष पुरुषार्थ करना है। अगर जो योगी, जो पुरुषार्थी अगर इन दो बातों का पुरुषार्थ करेगा, उसके लिए पुरुषार्थ का मार्ग बहुत साफ हो जाएगा। पुरुषार्थ करने के लिए उसके अंदर की जो कठिनाई वो समाप्त हो जाएगी। तो दो बातों का पुरुषार्थ अर्थात पहला पुरुषार्थ है अपने अंदर खड़े संस्कार को समाप्त करना। दूसरा पुरुषार्थ है हमारा योग किस स्थिति से लगता है या कि कौन सी स्थिति आपको अच्छी लगती है, उसका ही हमें डीप में पुरुषार्थ करना, प्रैक्टिकल में लाना, ये है दूसरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने अंदर का जो कड़ा संस्कार है उसको कैसे खत्म कर दे या उससे हमें क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हमें कड़े संस्कार को जानने के लिए हमारे अंदर कैसे पता चलेगा कि ये मेरा कड़ा संस्कार है, तो उसको जानने के लिए हम अपने बचपन से लेकर के अब तक जो घटनाएं घटी, जो हमारे पास विघ्न आए, उस विघ्नों को थोड़ा पीछे जा करके देखे, अब तक किस विकार ने या किस संस्कार ने मेरे अंदर गिरावट लाई है, मुझे ज्यादा तंग किया है। आप अपने घटी हुई घटना को याद करके पता करो या अभी भी कौन सा ऐसा संस्कार है या कौन सा ऐसा विकार है जो इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, प्रतिज्ञा करने के बावजूद भी वो बार बार रिपीटिशन होता है, न चाहते हुए भी 15 दिन 20 दिन एक मास या कभी कभी बीच बीच में रिपीटिशन होता है, ऐसा आपका कौन सा कड़ा संस्कार है उसको एक पर्सनल डायरी में लिखो, जो बचपन में भी था, ज्ञान में ज्ञान से पूर्व में भी था, ज्ञान में आने के बाद भी है, ऐसा कौन सा संस्कार है जो आप न चाहते हुए भी आता है, उसको एक दिन एकांत में बैठ करके आप चेक करो और उसको एक डायरी में लिखो और यही मेरा कड़ा संस्कार है, उसको रियलाइज करो। और उसी संस्कार को निकालने के लिए आपको जो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के कौन से पॉइंट चाहिए, तो जिस प्रकार का आपका वो कड़ा संस्कार है उसको ही निकालने के लिए युक्तियां, उसको ही निकालने का ज्ञान आपको चाहिए, और ज्ञान की आपको कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी किसी की जो बीमारी होती है उसी बीमारी की अगर वो दवाई लेगा तो ही उसकी बीमारी वो खत्म होगी, अन्यथा वो बीमारी उसकी खत्म नहीं होगी। जैसे समझो किसी को खांसी है तो खांसी वाला पेशेंट कौन सी दवाई लेगा, खांसी की ही दवाई लेगा ना। अगर खांसी वाला पेशेंट समझो सिर दर्द की दवाई लेगा तो उसकी बीमारी खत्म होगी, नहीं होगी। किस प्रकार की हमारी बीमारी है उसी प्रकार के हमें क्या करना है, पॉइंट्स लेना जरूरी है, उसी प्रकार का ज्ञान लेना जरूरी, तब वो संस्कार धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हमें एक पर्सनल डायरी बना करके अब तक उस संस्कार के बारे में बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा है उसको क्या करो, नोट करो। जो भी साकार मुरली भी जो चलते हैं, हम जब मुरली सुनते हैं उसी समय भी आपके अंदर किस प्रकार के संस्कार है, आपका कौन सा कड़ा संस्कार है, उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई, वही हम नोट करके उसको ही क्या करना है, धारण करना है, और उसको ही उस युक्ति को ही अपनाना है, तब वो धीरे धीरे वो संस्कार समाप्त होगा। जैसे युद्ध करते हैं, युद्ध करते समय भी दुश्मन का किस प्रकार का अटैक है उसी प्रकार का इधर से भी अटैक होता है। अगर समझो दुश्मन इधर से रॉकेट से मार रहा है और हम उसको बांध लगाएंगे तो खत्म होगा, नहीं, रॉकेट को रॉकेट से ही मारा जाता है, फ्लाइट का फ्लाइट के साथ ही युद्ध होता है। इसी प्रकार माया किस प्रकार के अटैक करते हैं उसी प्रकार का हमारा भी इधर ज्ञान का तेज चाहिए। अगर समझो माया काम विकार के द्वारा अटैक कर रही है और हम लोभ का पॉइंट बुद्धि में धारण करके उस समय लोभ के पॉइंट रिपीटेशन करेंगे तो विजय किसकी होगी। तो इसीलिए हमें गहराई से चेक करना है कि हमारे अंदर किस प्रकार के कड़े संस्कार है, किस प्रकार की माया है। श्री बाबा कहते हैं माया के भी नॉलेजफुल बनो। अर्थात जो आने वाले हमारे ऊपर माया अटैक करने वाले किस प्रकार के संस्कार से हम पराजित होते हैं, उसका ही नॉलेज लेना। उसके लिए जैसे आपको कहा कि एक तो पर्सनल डायरी बनाओ, उसके लिए अव्यक्त वतन अव्यक्त मुरली में जो बाबा ने कहा है, ये साकार मुरली में जो भी बाबा कहते हैं, उस सब बातों को नोट करो। उसके साथ साथ निकलने के लिए और दूसरी युक्ति है, जो भी आपके पास सीनियर भाई बहने आते हैं, उन भाई बहनों से उन बातों के बारे में जो अनुभव है, वो अनुभव हमें क्या करना है, लेना है। हम कहेंगे अगर हम किसी को अपने अंदर का कड़ा संस्कार बताएंगे तो वो भाई बहने हमें उस दृष्टि से देखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट बताने की अगर शर्म आती होगी तो भी आप क्या करो, उसको इनडायरेक्टली कहो कि भाई मेरे अंदर किसी के अंदर समझो ये ऐसा ऐसा संस्कार है, उसको निकालने के लिए आपकी क्या राय है। तो ऐसे हमें क्या करना है, हमारे अंदर के जिस प्रकार के कड़े संस्कार है उसको निकालने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ होता है, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, ये सब युक्तियां इकट्ठे करके उसको आप अपनाओ तो धीरे धीरे वो संस्कार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर वो संस्कार रह गया तो यही संस्कार हमें अंतिम समय भी पराजित करेगा, ये कभी भी हमें नहीं भूलना है। जैसे युद्ध भी जब करते हैं, युद्ध करते समय क्या करते है? क्योंकि अभी हमारा अंतिम युद्ध का प्रहार चल रहा है, तो अंतिम प्रहार में हमें क्या करना है, रावण को अच्छी तरह पूरा ही समाप्त करना है। अगर इसमें से रावण बच गया तो फिर हमारी पराजय होगी। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, वो युद्ध में क्या होता है, राम क्या करता है, स्टार्टिंग में रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, फिर चौथा, लेकिन वो दोबारा वापस क्या होता है, जुड़ जाता है। राम परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि आखिर क्यों नहीं मर रही है। जब उसको पता चलता है कि इसका जो मरने का स्थान है वो है नाभि, जब वो नाभि में तीर लगाना शुरू करता है तो दो तीन तीर में ही मर गया। अगर यही बात उसको पहले पता होती तो इतना युद्ध करने की उसको जरूरत थी नहीं, पहले ही मर जाता। तो इस प्रकार हमें भी क्या करना है, रावण टोटल मरने का स्थान है उसका ढूंढो, मरने का स्थान कौन सा है। तो रावण हमारे अंदर का टोटल रावण मरने का स्थान है मुख्य कमजोरी, जिसके जहां से रावण की प्रवेशता होती है हमारे अंदर, वो उसकी मुख्य कमजोरी पकड़ो और उस कमजोरी के ऊपर ज्ञान के तीर लगाओ। जितना वो वहां ज्ञान के तीर लगाएंगे उतना टोटल रावण मर जाएगा। नहीं तो अगर हम समझो युद्ध करते समय समझो को युद्ध की दो सेना होती है, एक साइड पर होते हैं, दूसरे साइड पर होते हैं और दोनों में मेन एक एक योद्धा होता है। और जो सैनिक है वो सैनिक क्या करते हैं, अपना जो मेन है उसको क्या करते हैं, छिपा करके पीछे रखते हैं ताकि वो मरे नहीं जल्दी। अगर वो मर गया तो उसकी हार गई उस सेना की, तो इसीलिए उसको पीछे रखते हैं। इसीलिए रावण माया भी क्या करते हैं, ये बहुत चालाकी से युद्ध करते है। हमें भी क्या करना है, ये युद्ध की ये नीति अपनाना है, युद्ध में जो नीति चलते वही नीति यहां अपनाना है। तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो मेन कड़ा संस्कार है वो हमारा वास्तव में सच दुश्मन है, तो हमें उसको हराना है। बाकी छोटी छोटी जैसे इधर अर्जुन है और इधर दुर्योधन है, तो या समझो इधर भीम और दुर्योधन, तो भीम क्या करेगा, अपना जो तीर चलाएगा वो तीर किसके पर चलाएगा, दुर्योधन के पर ही चलाएगा। बाकी उसके साथ और भी दुश्मन छोटी छोटी सैनिक भी प्यादे वगैरह लड़ रहे होते, लेकिन उसको कभी भी वो नहीं मारेगा, क्योंकि उसको मार कर उसको क्या फायदा है, उसको मारना है मेन। अगर उसको मारने में उसका टाइम वेस्ट है तो इसलिए वो उसको मारता है। अगर समझो दुर्योधन को उसने हराया वो मर गया, तो बाकी जो लड़ रहे वो अपने आप क्या करेंगे, वहां से भाग करके वापिस चले जाएंगे। तो इसलिए वो उसको ही दुर्योधन के ऊपर ये तीर चलाता है। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, हमारे अंदर का जो मेन सेना मुख्य कड़ा संस्कार है उसके ऊपर ज्ञान के तीर चला करके उसको समाप्त करो। अगर वो समाप्त किया तो ऑटोमेटिकली बाकी जो छोटे छोटे रहे हुए बातें है, छोटे छोटे जो संस्कार है, वो अपने आप युद्ध छोड़ करके, रंग छोड़ करके भाग जाएंगे, या एक तो शरण आएंगे या एक तो भाग जाएंगे। अगर हमने समझो मेन संस्कार को छोड़ कर, मारना छोड़ दिया और छोटी छोटी बातों में ही मारने में बिजी रहे, लगे रहे, तो समझो जब वो बड़ा संस्कार, कड़ा संस्कार देखता है कि मेरा बहुत नुकसान होने हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपना एक दो तीर चलाता है ताकि हमारी फिर पराजय होते, अर्थात वो संस्कार आकर के अटैक करता है। तो जितने हमने छोड़े हुए संस्कार है, छोड़ी हुई छोटी छोटी बातें, वो बातें क्या होते हैं, फिर दोबारा जिंदी हो जाते, दोबारा फिर रिपीटेशन होते, फिर हम सोचते अरे ये तो मैंने एक साल से छोड़ा था इस बात को, लेकिन ये कैसी रिपीटेशन हो रहे, क्यों हो रहे, क्योंकि हमने जो युद्ध की जो नीति है वो नीति ही क्या कर दिया, गलत प्रयोग कर दिया, और उसके कारण फिर दोबारा जो मरी हुई बातें है, जो 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 कुछ छोड़ी हुई बातें थी, वो दोबारा क्या हो गई, रिपीटेशन होना शुरू हो गई। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे अंदर का जो मेन संस्कार है उसको समाप्त करने का विशेष पुरुषार्थ करना, ये युद्ध की नीति अगर हम यहाँ अपनाएंगे तो हम युद्ध में कम समय में टोटल रावण को अभी मार सकेंगे। नहीं तो अगर हम छोटी छोटी बातों में निकालने में अगर बिजी रहेंगे तो फिर हमारा कड़ा संस्कार अंतिम समय तक क्या हो जाएगा, रहेगा, और यही संस्कार हमें अंतिम समय में पराजय कराएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, कड़े संस्कार को समाप्त करना, और कड़े संस्कार को निकालने के लिए पहले उस किस प्रकार का संस्कार है ये जांच करके उस संस्कार के बारे में वैराग अंदर से निर्माण करो। जब तक उस संस्कार के बारे में वैराग निर्माण नहीं होगा तब तक वो संस्कार समाप्त नहीं होगा। जैसे युद्ध में दिखाते ना, जब अर्जुन क्या करता है, एक बार युद्ध की तैयारी करने के लिए बैठता है और बाण और जो तीर है उनको घिसता है, उसको धार लगाता है, उसी समय उसको युद्ध की प्रेरणा आने के लिए वो क्या करता है, अपनी घटी हुई घटना को याद करता है। वो सोचता है इस दुर्योधन ने मेरे साथ क्या क्या किया है, मैं उसको अभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो और उसका खून गर्म हो जाता है और उसको जोर से वो बाण को और तलवार को घिसना शुरू करता है। उसको याद करता है कि मेरे द्रौपदी का उसने चीरहरण किया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसको क्या करता है, जोर जोर से वो घिसता रहता है। उसके बाद उसको लगता है कि मेरा तो उसने कितना ये किया, मेरे को तो उसने हरा दिया, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इतना ही उसको जब घटी हुई घटना को याद करता है तो उसको क्या करता है, युद्ध की खूब प्रेरणा आती है, और जब उसके साथ पास कृष्ण आता है वो भी उसको दिखाई भी नहीं पड़ता, इतना वो क्या करता है, वो उसमें उस घटी हुई घटना हो और उसको अपनी अग्नि, युद्ध की अग्नि निर्माण करता है। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, उस विकार को समाप्त करने के लिए, उस विकार को खत्म करने के लिए अंदर से प्रेरणा ही जागृत करने कि मुझे इस विकार ने, जो भी आपके अंदर कड़ा संस्कार है, समझो आपके अंदर कड़ा संस्कार है कि काम विकार, तो आप याद करो कि इस विकार ने मेरे साथ क्या क्या किया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो याद करता है कि मुझे वो उसने ये किया, तो ऐसे ही इस विकार ने, उस काम विकार ने मेरे सिर के ऊपर ताज था उसको भी गंवा दिया, उसको भी छीन लिया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो पूरा सोने के महल थे वो भी गंवा दिया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हमें क्या करना है, उसके बारे में अंदर से वैराग निर्माण करना है। जितना विकारों का वैराग निर्माण करेंगे, जितना उसके बारे में घृणा निर्माण करेंगे, उतना वो संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, निकाल सकेंगे। और उस जैसे दिखाते ना रामायण में दिखाते, जब सीता सामने आती है तो रावण सामने आता है सीता के, तो रावण क्या सीता क्या करते हैं, अपना शीर फेर लेते हैं, माना मुंह फेर लेते हैं, उसको देखने की उसकी इच्छा भी नहीं होती। तो ऐसे भी हमें भी क्या करना है, जब भी उस विकार के बारे में कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई भी जैसे काम विकार अगर महाशत्रु है तो उसके बारे में कोई भी बातें जब आते हैं सामने, जैसे हम समझो कोई गंदी चित्र है, टीवी है, कोई सीन सीनरी है, ऐसी आते हैं, तो उसके बारे में हमें मुंह फेर लेना, अर्थात उस रावण का अपमान करना। अगर हम देखते रहेंगे तो रावण के साथ, दुश्मन के साथ क्या किया, दोस्ती क्या, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश कर देगा। तो इसीलिए हमें उस कड़े संस्कार के बारे में अंदर से घृणा निर्माण करना है और अंदर एक अपने एक पर्सनल डायरी बना करके लिखना है कि इस विकार ने मेरे साथ क्या क्या किया है। अगर फिर भी मैं ज्ञान मिलने के बाद भी अगर उस विकार के वश होता हूँ तो मेरा क्या हाल हो जाएगी, मेरे को क्या पद मिलेगा, मेरे कैसा होगा। तो जितना उसका मनन चिंतन करेंगे, जितना अगर उसके बारे में घृणा नुकसान की बातें याद करेंगे तो उतना ही उस विकार के बारे में क्या हो जाएगा, वैराग निर्माण होगा, उतना ही उस विकार को निकाल सकेंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, अपने अंदर के कड़े संस्कार को निकालने के लिए विशेष वैराग निर्माण करना जरूरी है। और हमें क्या करना है, उस कमजोरी को खत्म करने के लिए, जैसे दिखाते ना जब शायद युद्ध करते समय क्या करते हैं, जब दुर्योधन और भीम का युद्ध होता है तो दुर्योधन की जो कमजोरी थी वो कमजोरी कहाँ थी, जांग में। तो वहां ही क्या करता है, वो गधा लगाता है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो मुख्य कमजोरी है वहां अगर हम ज्ञान की गधा लगाएंगे तो टोटल रावण, टोटल दुर्योधन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सब टोटल और सब दुर्गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये विशेष युक्ति अपनाना है। और रोज हम क्या करें, उस अगर वो संस्कार हमारे अंदर है तो आप बाबा को सुना, सवेरे उठते हैं उस समय बाबा को सुना। बाबा को सुनाने से भी क्या हो जाएगा, बाबा हमें रोज युक्तियां बताएगा उस निकालने के लिए। अगर हम बाबा को सुनाएंगे नहीं संस्कार के बारे, इसी बाबा कहते हैं आपको जो भी कुछ बीमारी है मुझे सर्जन को बताओ, क्योंकि सर्जन आपको, और ये बताने का टाइम है अमृत वेला। जैसे कोई हॉस्पिटल होता है, वो हॉस्पिटल में जब वार्ड में डॉक्टर आने का एक समय फिक्स होता है और उसी समय वो क्या होता है आता है, जब डॉक्टर आता है उस समय पेशेंट क्या करता है, उठ करके अपनी जो भी बीमारी है वो बीमारियां क्या करता है, बता देता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये। अगर जब डॉक्टर वार्ड में आया है और पेशेंट आराम से वहां सोया है या समझो उठा भी है लेकिन उठ करके झुटका लगा रहे, तो उस समय डॉक्टर को लगेगा देखो मैं ही इतना दूर से आया हूँ और ये तो आराम से झुटका लगा रहा है या सो रहा है, तो वहां से निकल करके चला जाएगा अगले पेशेंट को चेकिंग करने के लिए। ये समझो कोई पेशेंट उठाए, उठ करके आराम से वहां डॉक्टर को ही देखते रहा या आंख बंद किया, तो उसके डॉक्टर को कैसा लगेगा। इसीलिए पेशेंट जब आता है, वो डॉक्टर जब आता है तो पेशेंट ये थोड़ी सोचता है कि ये तो डॉक्टर है ना, सब कुछ जानता है ना मेरे को क्या क्या बीमारी है, लेकिन नहीं, वो थोड़ी दवाई देगा। वो डॉक्टर पहले पूछता है कि आपको क्या क्या तकलीफ है, वो तकलीफ जो बताएगा पेशेंट उसी अनुसार वो दवाई देता है। तो डॉक्टर को थोड़ी कहा जाता है कि तुम जानो ना मेरे अंदर क्या क्या बीमारी है, नहीं। अगर कोई समझे पेशेंट आए उसको कोई बीमारी भी नहीं होगी, कुछ तकलीफ भी नहीं होगी, तो क्या गुंगा होकर के बैठता है, नहीं। वो बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने जो भी मुझे दवाई दी उसे मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो डॉक्टर को खुशी हो जाएगी ना, डॉक्टर को लगेगा वाह मेरी दवाई का इसके ऊपर कुछ असर पड़ गया, वो खुश हो जाएगा। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, जब वार्ड में डॉक्टर आने का जैसा समय फिक्स होता है तो इस सृष्टि रूपी वार्ड में शिव बाबा सर्जन आने का एक समय फिक्स है, 2 से 5 बजे तक इस वार्ड में आकर के सभी पेशेंट की बेड पर आकर के चक्कर लगा करके सबको देखता है। उसी समय हमें बाकायदे उठ करके क्या करना है, अपनी बीमारी बताना जरूरी है। यह समझे बीमारी नहीं होगी तो, तकलीफ नहीं होगी तो भी डॉक्टर साहब आपने जो भी कुछ दवाई दी मैं उसे जो भी कुछ ज्ञान दिया बाबा उसे मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो यह सुनाते हुए बाबा का शुक्रिया करना है, शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया बाबा, ताकि बाबा को लगेगा वाह मैं जो ज्ञान सुनाया उसे एकदम ठीक हो गया, चलो। तो बाबा को खुशी हो जाएंगे ना। अगर समझो नहीं भी कोई बीमारी है भी तो भी क्या करो, बाबा ये मेरे अंदर आपने जो भी कल पॉइंट सुनाई उससे मेरे को थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन और थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो ये विकार ने मेरे पर थोड़ा भी संकल्प आ गया, अटैक कर दिया, तो बाबा और उससे भी बढ़िया दवाई दे देगा, लिख करके खुद आकर के दे देगा या किसी कंपाउंडर के द्वारा भेज देगा। तो इसी तरह हमें जरूर सुना नहीं, लेकिन हम क्या करते सोचते बाबा से क्या बोले अमृत वेला, تو ایسے ہمیں کیا کرنا ہے, رو روان کرنا ہے. اب کو جو بھی کچھ بیمار ہے, سمجھو ڈاکٹر آیا ہے اور ہم سوچیں گے ڈاکٹر کے ساتھ کیا بولنا ہے, ابھی یہ تھوڑی سوچتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ وہی بولنا ہے جو آپ کو جو تکلیف ہے وہی بولنا ہے. تو واسطو میں یوگ مطلب کیا ہے, یہی ہے ہم بابا کے ساتھ رو روان کرنا, مطلب آپ کو جو تکلیف ہے یا جو کچھ پایا وہی اس کا ورنن کرنا, یہی یوگ ہے. اسے وہ سنسکار دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا, سماپت ہو جائے گا. اور ہمیں وہ سنسکار کی اسٹڈی کرنا ہے. اگر وہ سنسکار ہم آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس سمے آپ کے دوارا کیا کیا ہوتا ہے. جب آپ اچھے تھے وگھنوں کی کیا کرو, اسٹڈی کرو. ہمیں ہمارے اندر جو وگھن آتے ہیں, جو بھی کچھ گھٹنا گھٹتے ہیں, وہ بہت کلیانکاری بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں, بہت کچھ دے کے جاتے ہیں, لیکن ہم اس کی اسٹڈی نہیں کرتے. ہم سوچتے یہ ایسا کیوں ہو گیا, لیکن نہیں, جب کوئی وہ وکار آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے, جب وگھن آتا ہے, تو اس سمے آپ جب اچھے تھے, بہت اچھے تھے, آپ کی استھتی اچھی تھی, مانا پیچھے پیچھے جاؤ جب آپ اچھے تھے, لیکن اس سمے کیا ہو گیا, آپ نے کیا دیکھا یا کیا سنا, تب وہ آپ کا سنکلپ چلا, تب وہ وکار دھیرے دھیرے آپ کے اندر انٹری کیا, یا کون سی آپ نے کمزوری کی تب وہ وکار اٹیک کیا, کون سا سریمت آپ نے الگھن کیا. تو اس باتوں کو آپ کیا کرو, اسٹڈی کرو اور ان باتوں کا اٹینشن دو. باتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, سمجھو جیسے کوئی کسی کے اندر سمجھو مین سنسکار کام وکار اٹیک کرتا ہے, تو اس نے چیک کرنا ہے کہ وہ کب اٹیک کیا. تو پیچھے پیچھے جاؤ, دو چار دن, تین دن, تب جب سے وہ آپ اچھے تھے تب تک وہاں کے دن تک واپس جاؤ اور دیکھو آپ نے کیا دیکھا. کچھ کوئی ٹی وی کا سین دیکھا یا کوئی پوسٹر دیکھا یا کوئی گندا کتاب پڑھا, اگر وہ چھوٹی چھوٹی یا کوئی کسی کو دیکھا, اس کے دیہ کے بہان کو دیکھا, تو دیہ کی سندرتا کو دیکھا, اگر وہ پیچھے پیچھے باتوں کو جا کر کے اس کو دیکھو کہ کہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور ان باتوں کے اوپر آپ اٹینشن دو, تو بڑے سوروپ میں جو مایا اٹیک کرنے والی وہ نہیں کرے گی. تو اس طرح سے ہمیں وگھن کی اسٹڈی کر کے, اور جب وہ وگھن ہو, جب وہ وکار ہمارے پر اٹیک کرتا ہے تو ہمارا کیا ہو جاتا ہے, مطلب کیسے ہمارے کرمندر کنٹرول میں نہیں ہوتی, کوئی بھی ہمارے مطلب سریمت مریادا کا الگھن ہوتا ہے, تو اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب تک مایا اٹیک کرتے ہیں, جس کے مطلب ہمارے اندر پاور نہیں ہے. تو اتنا ہی ہمیں کیا کرنا ہے, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے بیچ بیچ میں جو ہونے والی پریکشا ہے اس کے اندر وہ فیل ہوتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہوں, اس کا مطلب میں فائنل میں فیل ہو جاؤں گا. تو اتنا ہی وہ ٹیسٹ پورا ہونے کے بعد بھلا وہ فیل ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے اسٹڈی کو اور کیا کرتا ہے, تیز کرتا ہے. اسی طرح جب ایسے وکار یا کوئی وگھن ہمارے پر اٹیک کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, اگر ہم فیل بھی ہو جاتے ہیں تو نراش ہونے کی کوئی بات نہیں, لیکن اس کے بعد پھر کیا کرو, اس پڑھائی کو اور تیز کرو. جو سبجیکٹ آپ کا فیل ہو جاتا ہے اسی سبجیکٹ کو پھر تیز کرو. سمجھو کون سے وکار کے کارن آپ فیل ہو گئے, اس وکار کو نکالنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کی اور اسٹڈی کرو, اور کوئی چارٹ رکھو, کوئی گیان کے پوائنٹس, گہرے پوائنٹس لو, تو اتنا ہی آپ لاسٹ سمے اس وکار کا اٹیک ہوگا اس سمے آپ بچ سکیں گے. اگر ہم نے ابھی وہ ڈونٹ کیئر کیا, اگر ہار بھی گئے یا مایا نے اٹیک کر بھی دیا, تو بھی اس کے بعد ڈونٹ کر کے کیئر کر کے پھر ایسا ہی سمے گنوایا, تو انتم سمے وہی وکار آپ کو کیا کرے گا, اٹیک کرے گا, ہرا دے گا. تو اسی لیے ہمیں ابھی بھی وگھن آتے یہ بہت کلیان کاری, اس لیے ہمیں کبھی ڈرنے کی بات نہیں, لیکن پھر بھی اور ہمیں کیا کرنا ہے, پرشارت کو تیز کرنا ہے, تیور کرنا ہے. اسی لیے بابا کہتے ہیں نا, ویگن ویگن نہیں, یہ ایک پرکار کا توحفہ ہے, سمسیا سمسیا نہیں لیکن یہ توحفہ ہے. لیکن یہ توحفہ کو ہم ڈر جاتے, اس کی اسٹڈی نہیں کرتے. توحفہ اس کے لیے ہے جو ویگنوں کی اسٹڈی کرتا ہے, اس کے لیے یہ ویگن, یہ پرستھتیاں, یہ سب باتیں یہ توحفہ ہے. اگر جو اسٹڈی ہی نہیں کرتا, ارتھات وگھنوں کی اسٹڈی بنا کرتے انتی کے لیے اور کوئی چارٹ وغیرہ نہیں رکھتا, کوئی پلاننگ نہیں بناتا, اس کے لیے وگھن سمسیا یہ اور ہی ایک پرکار کا خطرہ ہے. اور بار بار ہار ہار کر کے ہار ہار کر کے ایک سمے آئے گا, وہ ٹوٹلی گیان مارگ سے ہٹ جائے گا یا اس سنسکار کے وشیبوت سدا کے لیے ہو جائے گا. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے, یہ وگھن, یہ سمسیا یا کوئی ایسا وکار اٹیک کرتا ہے, کوئی کڑا سنسکار اٹیک کرتا ہے, تو اس کی کیا کرنا ہے. स्टडी करके फिर क्या करना है उसको सब। इसलिए मम्मा का ना एक गलती दोबारा न हो जाए, एक गलती जब होती है एक भूल हो जाते वो दोबारा न करना, वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। इसी तरह कोई भी विकार हमारे पर अटैक करता है वो दोबारा न करे, यही हमें क्या करना है पॉइंट्स इकट्ठा करके उसकी स्टडी करके ये निकल। इस तरह से हमारे अंदर का मुख्य जो कड़ा संस्कार है वो कौन सा है वो जान करके उसको समाप्त करने का करने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स लेना और उसको क्या करना है सदा के लिए समाप्त करना। ये जो पहला आपको पुरुषार्थ बताया तो ये है मेन पुरुषार्थ। और जितना ये पुरुषार्थ आप करेंगे उतना माया बीच बीच में जो आपके मार्ग में इस पुरुषार्थ हमें जो हराते है वो कभी भी नहीं आ रहेंगे। तो जो हमारे अंदर जो मेन संस्कार है जो संस्कार बार बार हमें हराता है तो उसके पर अभी ध्यान दे करके उसको क्या करो सदा के लिए समाप्त करो। ये है बहुत बड़ी भातुरी, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तो जैसे हमारे क्योंकि यहाँ के युद्ध के अनुसार यहाँ के हमारे संस्कार के अनुसार ही हमें क्या होगा भविष्य की राजा मिलेगी। हम ज्ञान में कितना वैल्यू नहीं लेकिन ज्ञान में चलने के बाद हमारे अंदर का जो मेन संस्कार है उसको कितने समय में समाप्त कर दिया ये महत्व का है। अगर समझो कोई ज्ञान में चल रहा है 20 साल से चल रहा है लेकिन उसका जो कड़ा संस्कार है उसके अंदर का जो मेन संस्कार है वो बार बार मास में दो मास में उसको हराता जाता है हराता जाता है अभी भी हराता है तो भी तो अगर समझो कोई एक ज्ञान में चलता है और वो 2 साल से ही ज्ञान में लेकिन उसके अंदर का जो मेन मुख्य कड़ा संस्कार था जिसने उसके जीवन को बर्बाद किया था उस संस्कार को ज्ञान में आते ही तुरंत उसने वैराग करके समाप्त कर दिया तो वो जो 1-2 साल वाला पुरुषार्थी वो 40-20 साल वालों से भी आगे है। इसलिए बाबा कहते हैं ना लास्ट सो फर्स्ट। तो हमें क्या करना है अपने अंदर क्योंकि हर एक के अंदर ये मेन एक एक संस्कार तो जरूर होता है और मेन जो युद्ध होता है वो संस्कार के साथ ही युद्ध होता है। और वो संस्कार जब हर एक के अंदर जब आता है जो मेन संस्कार क्योंकि हर एक का अलग अलग होता है तो जिसका जो मुख्य संस्कार है वो जब आता है तो फिर वो सब हथियार छोड़ करके बिल्कुल इतना बड़ा पुरुषार्थ इतना बड़ा ज्ञानी वो भी क्या करता है उसके सामने झुक जाता है। तो जैसे अगर वो संस्कार के बार बार वशीभूत हो जाएंगे तो कोई भी कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं होती सब कर्मेंद्रिया अनकंट्रोल। तो अगर हमारे वो संस्कार के वशीभूत होने की बार बार ये संस्कार होंगे तो भविष्य में हम राजा बनेंगे लेकिन राजा बनने के बाद 2-3 साल के राजा उसके बाद फिर राजा से हटाया जाएगा या एक जन्म के राजा जो अगले जन्म में फिर दूसरे किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ जब उस संस्कार के ऊपर हमारा जीत होते तब हम सब कर्मेंद्र को कंट्रोल करते और उसके बाद जब हम उस संस्कार के वशीभूत होते तो कर्मेंद्र का राज्य हमारे पर चलता है अर्थात हम वशीभूत होते। तो ये संस्कार के कारण ही हमारा भविष्य का राज्य भी जैसे जिसने संस्कार के पर इसलिए बाबा कहते हैं 100 राज्य अधिकारी 100 विश्व राज्य अधिकारी। तो हमें अपने 100 पर राज्य करने के लिए हमारे अंदर का जो कड़ा संस्कार है उसको जीत लो उसको क्या करो उसको अभी बंदी बनाओ उसको बंदी बनाएंगे उसको समाप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा आप राजा बनेंगे। अगर वो संस्कार ही आपको बंदी बना दे तो आपको भी क्या हो जाएगा भविष्य में भी आप राजा बनेंगे तो आपको भी वो दूसरा राजा बंदी बना देगा अर्थात आप किसी के अंडर में चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कितना साल में ज्ञान में चलते है वो ये नहीं लेकिन हमें ज्ञान में चलने के बाद हमारे अंदर का जो कड़ा संस्कार है उसको समाप्त करना और जिसका जितना दुश्मन बड़ा संस्कार बड़ा और उसके ऊपर जीत पाना उतनी बड़ी उसकी बहादुरी है। समझे तो कुमार है बाबा कहते ना कुमारों का पाठ भविष्य ऊंचा है क्यों कुमारों का जो दुश्मन है वो बड़ा है मुख्य कड़ा संस्कार वो काम विकार है और जो आम लोग होते हैं गृहस्थी वगैरह उनको तो मेन जो मोह ममता यही चीजें ज्यादा उसको अट्रैक्शन करते हैं मतलब उनके लिए वो कड़ा संस्कार भूलने का किसी को याद भूलने का या ममता भूलने का उनको तो काम विकार वगैरह इतना ज्यादा तो ये नहीं करता क्योंकि वो तो वशीभूत हो जाते हैं उन तो अनुभवी। लेकिन इसीलिए जितना जिसका दुश्मन बड़ा उतना ही उसका पुरस्कार भी बड़ा होता है। जैसे युद्ध में भी होता है ना जो युद्ध में बड़े योद्धा को मारता है उतना ही उसका नाम भी उतना ही गाया जाता है। तो ऐसा ही हमें हमारा इसीलिए कभी ये नहीं सोचना कि हमारा ये दुश्मन तो इतना बड़ा है हम कैसे जीत सकते हैं, नहीं। लेकिन हमें जितना दुश्मन बड़ा उतना ही हमारा इनाम भी बड़ा है, पद भी बड़ा है, इसलिए कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से हमें अपने अंदर का जो कड़ा संस्कार है उसको जान करके, उसको पहचान करके, उसको सदा के लिए अगर समाप्त करेंगे तो हमारे योग साधना में जो बीच बीच में विघ्न पड़ते हैं वो विघ्न हमें नहीं पड़ेंगे, हमारी एकरस अवस्था चलेगी। और जो हमें जो पुरुषार्थ में मार्ग में विघ्न आने का यही मेन कारण है, तो इस मेन योद्धा को समाप्त करो ताकि आपका युद्ध फिर समाप्त हो जाएगा। अगर इसको समाप्त नहीं किया, हम सोचते कि चलो इसको निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, ये छोटी छोटी बातें इनको समाप्त करते हैं, फिर इसको आराम से लास्ट में निकाल ही देंगे, लेकिन वो लास्ट में निकलने वाला नहीं है अगर उसको अभी रखा। इसलिए पहला उसको समाप्त करो, उसको समाप्त करेंगे तो बाकी सब अपने अपना भाग जाएंगे। तो ये मेन पुरुषार्थ अभी क्या करना है, हमें करना है उसके लिए उसको समाप्त करने के लिए ज्ञान के पॉइंट इकट्ठा करो और उसके बारे में बहरा करो। पहले एकांत में बैठ करके मेरा पर्सनली मेन कड़ा संस्कार कौन सा है उसको पहले जानो, और जान करके फिर उसके बारे में वैराग्य निर्माण करके उसको समाप्त करना, ये है मेन पहला पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ है आपको इस ज्ञान मार्ग में कौन सी स्थिति अच्छी लगती है। हरेक को अलग अलग स्थिति अच्छी लगती है, किसको बिंद स्थिति अच्छी लगती है, किसको फरिश्त स्थिति अच्छी लगती है, किसको विधेयी बनना अच्छा लगता है, किसको आत्मिक स्थिति में स्थित रहना अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिस स्थिति से आपका योग बढ़िया लगता है, उसी स्थिति का क्या करो, आप मेन पुरुषार्थ करो। तो जो पुरुषार्थ आपको अच्छा लगता है उसका ही डीप में अभ्यास करना, ये है दूसरे टाइप का मतलब दूसरा पुरुषार्थ। क्योंकि हर एक को अलग अलग स्थिति अच्छी लगती है। क्यों अलग अलग स्थिति अच्छी लगती है, क्योंकि कल पहले जिसने जिस स्थिति का पुरुषार्थ किया था, जिस स्थिति से अभ्यास करके माया पर जीत पाया था, वही स्थिति इस कल्प में भी उसको अच्छी लगेगी। और इसके लिए समझो कोई क्लास कराता है, कोई ये मुरली बाबा कोई चलाता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है उसी बारे में अगर उसी दिन पॉइंट्स आएंगे, उसको लगेगा वाह आज मजा आ गई, आज बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा बाबा की मुरली थी। या ऐसा क्यों, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है उसी प्रकार से अगर मिल जाता है माल पानी तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आपको पर्सनली किस स्थिति से योग आपका बढ़िया लगता है, या जिस समय आप योग लगाते हैं उस समय, या जिस समय आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है उसी समय आपका कौन सा अभ्यास रहता है, और किस स्थिति से योग लगाने से आपके ऊपर माया अटैक नहीं करती, आपको बहुत अच्छा सुख मिलता है। तो ये आपका मेन जो स्थिति है उस स्थिति को क्या करो, एक डायरी में लिखो। और आप क्या करना है, जो पॉइंट्स आपको ज्ञान की चाहिए, जो स्थिति आपको अच्छी लगती है जिससे आपका योग बहुत अच्छा लगता है, उसी स्थिति के लिए ही क्या करो, आप पॉइंट्स इकट्ठा करो और उसके डीप में जाओ। वो आपके मंजिल तक पहुंचने का, आपके संपूर्णता तक पहुंचने का वो हाईवे है। जो आपको जो स्थिति अच्छी लगती है, आपको बिंदुरूप अच्छी लगती होंगी, तो बिंदुरूप स्थिति ये आपके संपूर्णता के संपूर्णता के मार्ग तक पहुंचने का ये हाईवे है। समझो किसी को विधेयी स्थिति अच्छी लगती है, तो विधेयी स्थिति उसके मार्ग तक पहुंचने का ये हाईवे है, क्योंकि कल पहले भी वो आत्मा विधेयी स्थिति द्वारा उस मार्ग तक पहुंची थी, इसलिए इस कल्प में भी उसी मार्ग से उसी स्थिति से ही पहुंचेंगे। तो उसके लिए उसने वही अभ्यास करना उसके लिए कल्याण करे। जब जो पुरुषार्थी जिसको जो अच्छी लगते उसी स्थिति का अभ्यास करेगा, उस समय उसके मार्ग में कोई भी विघ्न आएगा नहीं, और उसको योग में अच्छा अनुभव होगा, उसकी स्थिति भी अच्छी लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करने के बजाय किसने आज कुछ सुनाया, फिर अपना हाईवे छोड़ करके क्या करते, जो कुछ सुनाता है उसको फॉलो करके चलते, कुछ दिन 3-4 दिन चलेंगे, उसके बाद फिर विघन आना शुरू हो जाएगी, कुछ अनुभूति नहीं होगी, फिर सोचेंगे अरे पहले मैं जो करता था ना वही ठीक है, चलो वही करेंगे, इसमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। फिर बाद में वही हाईवे के लिए आएंगे, तो बीच का कुछ दिन तो आपके वेस्ट गए ना। उसके बाद फिर चलते चलते फिर बाद में आगे किसी ने कुछ सुनाया तो फिर सोचेंगे अरे ये तो सुनाता है वही ठीक है, चलो हम वही फॉलो करेंगे, फिर उसके मार्ग में चलेंगे। फिर कुछ दिन आपको अनुभव नहीं होगा, कुछ ये नहीं होगा, उसके बाद फिर वापिस वही हाईवे के लिए आएंगे। फिर बाद में फिर किसी ने कहा नहीं सर्व संबंध भी बाबा के साथ चाहिए, सर्व ये भी चाहिए, फिर सोचे अरे मैं तो वो करता ही नहीं, मेरे को वही करना चाहिए। फिर प्लान बनाएंगे पुरुषार्थ का उस अनुसार, फिर करते चलेंगे चले जाएंगे, फिर वापिस कुछ अनुभव नहीं होगा, फिर वापिस वही हाईवे, क्योंकि कल्प पहले अगर किया ही नहीं होगा तो अनुभव कैसा होगा। तो इसीलिए हमें जो स्वयं को जो अच्छा लगता है, जिससे आपका योग अच्छा लगता है, वही करते जाना, उसके अंदर पुरुषार्थ में सफलता है, क्योंकि कल पहले आपने जो किया था वही आपको अच्छा। तो इसीलिए हमें से जो अच्छा लगता है उसका ही पुरुषार्थ करना है, इधर उधर हमें ये नहीं करना है ना। तो जैसे 17 कुएं खोद लिया, पानी किसको भी नहीं तो क्या होगा, इसीलिए 17 कुएं नहीं खोदो, एक ही कुआ खोदो, अर्थात एक ही स्थिति का अनुभव करो और उसके डीप में जाओ, तो वही आपको अनुभव। और अनुभव तो ये कहता है प्रैक्टिकल में, एक स्थिति में सारी स्थितियां समय हुई है, अगर आप एक कोई स्थिति का अभ्यास करते हैं तो बाकी सर्व स्थितियां उसके अंदर समय हुई है। समझो किसी ने बिंद्रुप स्थिति का ही केवल अभ्यास किया तो उसके अंदर सर्व संबंध भी आ जाएंगे, उसके बाद अलग अलग सब कुछ बातें, आत्मिक स्थिति, विदेही, सब कुछ एक में आएगा। तो एक स्थिति में सारी स्थितियां समाई हुई है, तो एक कोई स्थिति के परफेक्ट मास्टर बनो, अगर एक स्थिति का मास्टर बन जाएंगे तो आपको सब स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए इधर उधर नहीं करो, कोई ना कोई एक स्थिति का अभ्यास करो, और कोई जो आपको स्थिति अच्छी लगती है उसके लिए आप क्या करो, भले क्लास सुनो, भले सबका सुनो, लेकिन आपके स्थिति के लिए उन्होंने क्या सुना है उतना कैच करो, बाकी सब बातों को भूल जाओ और उसी बातों को प्रैक्टिकल में लाओ, तो आपको मदद, कोई भी आपके पास आता है तो उसको और कोई प्रश्न पूछने के बजाय, और कोई बातें पूछने के बजाय, जो आपको अच्छा लगती है स्थिति उसके लिए उनके उनसे कुछ प्रश्न पूछ करके, भाई साहब मेरे को इसके बारे में आप सुनाओ, समझो आपको बिंद्रुप स्थिति अच्छी लगती है, तो कोई आता है सीनियर भाई बहने, तो उनको केवल बिंद्रुप स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछ करके उनके पॉइंट निकाल करके ले लो, तो उसमें आपकी उन्नति, और उस बिंद्रुप स्थिति को आप माइक्रो अर्थात सूक्ष्मता से अनुभव करते चले जाएंगे, और योग की गहरी अनुभूति होती रहेंगे। और उसके लिए अव्यक्त मूल्यों से जो भी साकार मूल्य चलते हैं, जो भी सीनियर भाई बहन है, तो हमें क्या करना है, मैगजीन से, किताबों से, उस एक स्थिति के बारे में हमें क्या करना है, डीप में अनुभूतियां करना है, और एक स्थिति का पुरुषार्थ यही हमें अंतिम समय बचाएगा। नहीं तो 17 स्थिति का अगर मैं बिंद्रुप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन अनुभूति किसकी भी नहीं, तो आप लास्ट समय धोखे में रहेंगे। जैसे एक सुनाते ना, एक भगत था, और ये भगत क्या करता है, एक बार राम जब उसको संकट आता है तो उस समय राम को बुलाता है, हे राम राम आओ, तो राम आने तक तो फिर दूसरे को पुकारता है, सोचता है ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर दूसरे को पुकारना शुरू करता है, हे हनुमान आओ आओ, जब वो सोचता है कि पता नहीं ये कब आएगा, फिर तीसरे को बुलाता है, चौथे को बुलाता है, पांचवे को, तब तक वो संकट वो विघ्न आकर के उसको हरा करके चला भी जाता है, मर जाता है फिर। तो इसी तरह अंतिम समय अगर समझो हमें कोई विघ्न या समस्या या प्रॉब्लम आया होगा, और उस समय अगर हम सोचेंगे मैं बिंद्रुप हूँ, बिंद्रुप नहीं नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, नहीं नहीं मैं ये हूँ, अलग अलग प्रकार में अगर भागते रहेंगे और अनुभूति किसकी भी नहीं होगी, तो कोई भी स्थिति का अनुभव नहीं होगा, तो वो विघ्न आपको हरा करके चला जाएगा। अगर समझो हमने यही शुरू प्रैक्टिकल में कोई एक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास किया होगा, तो अंतिम समय समझो हमको कोई विघ्न आएगा तो तुरंत उस स्थिति में चले जाओ, तो आपका बचाव होगा, अगर शरीर भी छूटेगा भी तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए हमें कोई एक स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है, ताकि यही स्थिति का पुरुषार्थ हमें अंतिम समय मदद करेगा। जैसे कोई होते ना डॉक्टर्स, कोई स्पेशलिस्ट, समझो उसको और चीजों का भी ज्ञान तो होता है, लेकिन एक चीज का स्पेशलिस्ट होता है वो, डेंटल स्पेशलिस्ट, कोई आई स्पेशलिस्ट, कोई एयर स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, ऐसा हमें भी क्या करना है, कोई एक स्थिति का स्पेशलिस्ट बनना है, अर्थात एक स्थिति का डीप हमें अनुभव करना है। तो डीप अनुभव हम टोटल ब्राह्मण परिवार में कहना चाहिए कि इस व्यक्ति को इस स्थिति के बारे में पूछो। और यही अगर हम किसी को अनुभूति भी कराते हैं तो यही अनुभूति, क्योंकि अंतिम समय लोग आपके पास आएंगे। अभी तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको कहते हैं, जो कुछ सफेद ड्रेस पहनता है, बैच पहनता है, उसको ब्रह्मा कुमार कुमार कहते हैं। लेकिन अंतिम समय ब्रह्मा कुमार कुमारी की भाषा कैसी रहेगी, माना परिभाषा उसको कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कुछ अनुभूति कराता है। अगर समझो अंतिम समय लोग सुनेंगे टीवी में वगैरह न्यूज में सुनेंगे, अगर शांति चाहते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास जाओ। अगर अंतिम समय समझो कोई आता है कहेगा कि मेरा परिवार की परिवार उस भूकंप में समाप्त हो गया, मेरा सब कुछ, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, तो मुझे कुछ अनुभव सुना है कि आपका टीवी में हमने बहुत पहले देखा था कि आप शांति का अनुभव कराते, टेंशन मुक्त कराते, तो मुझे कुछ अनुभूति कराओ। अगर समझो वो आकर के कह रहा है, अगर उस समय आपके पास आया, अगर उस समय आपने अनुभूति नहीं कराया था करेंगे तो कहेंगे शायद आप ब्रह्मा कुमार नहीं हो। तो देखो और क्या हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उस व्यक्ति को अनुभूति कराने के लिए हमें कोई एक स्थिति का परफेक्ट अनुभव होना जरूरी है। अगर हम उसी समय उसी स्थिति में अगर जाएंगे तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनुभव होगा, और जिसके सामने अनुभव होगा तो वो आपको इष्ट मानेगा। और जितना जिस आत्मा को आप अंतिम समय संतुष्ट करेंगे, जितनी लंबी लाइन आपके सामने लगेगी उतना ही भगत आपके सामने भक्तों की लाइन लगेगी। तो इसलिए सभी भक्तों को संतुष्ट करने के लिए हमें क्या करना है, वर्तमान समय कुछ ना कुछ एक स्थिति का परफेक्ट अनुभव करना जरूरी है। तो एक अनुभव करने के लिए हमें एक स्थिति के डीप में जाना जरूरी है। तो यही स्थिति हमें क्या हो जाएगी, अंतिम समय बचाएगी भी। और जो लंबा समय तक बहुत कालों का जो अभ्यास करता है वही अभ्यास का साक्षात्कार दूसरों को होगा। और समझो कोई मारने के लिए अंतिम समय आएगा जब गृह युद्ध चलेगा, और उस समय अगर हमारा कोई भी अभ्यास नहीं होगा तो हम सोचेंगे नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, नहीं नहीं शांत स्वरूप हूँ, निश्वरूप हूँ, तो उस समय वो मार कर चला भी जाएगा। अगर उस समय कोई एक स्थिति का अभ्यास होगा तो वो व्यक्ति आएगा तो उसको भी वो स्थिति का साक्षात्कार होगा। भक्तों को भी अंतिम समय जिसने बिंदु स्थिति का अभ्यास किया होगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, उसका बिंदु दिखाई पड़ेगा। किसने अलग अलग सोमानों के अभ्यास किए होंगे तो उसी सोमानों के अभ्यास होंगे। तो इसलिए हमें कोई ना कोई एक स्थिति का बहुत काल का अभ्यास होना आवश्यक है, और यही अभ्यास हमें बचाएगा, और यही अभ्यास के द्वारा हम साक्षात्कार भी औरों को करा सकेंगे। तो इसलिए हमें जो स्थिति अच्छी लगती है, जिससे हमारा योग अच्छा लगता है, वही एक स्थिति का अभ्यास करना जरूरी है। और इसके लिए अलग अलग प्रकार से पॉइंट्स लेना जरूरी है। अगर हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है, समझो कड़ा संस्कार आपके ऊपर अटैक करता है, तो अटैक करता है तो उसको भी निकालने का एक तरीका है। जो आपको स्थिति अच्छी लगती है उसका आप अभ्यास करना शुरू कर दो। वो कड़ा संस्कार जब आता है तो धीरे धीरे वो तुरंत जाएगा। कड़े संस्कार के लिए विरोधी या उसके लिए खतरा कौन सा है, जो स्थिति अच्छी लगती है उसके लिए वो दुश्मन है। अगर उस जब कड़ा संस्कार प्रवेश करता है तो जो अच्छा लगता है उसका अभ्यास करो, वो कड़ा संस्कार तुरंत वहां से भाग जाएगा। और कड़ा संस्कार भी तब आता है जब हमें जो स्थिति अच्छी लगती है उसको हमने जब डोंट केयर करते, उसको उसकी स्टडी थोड़ा कम करते, तो कड़ा संस्कार उभर आ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, तो जो अच्छा लगता है उसी स्थिति में सदा ही रहना है, तो ऑटोमेटिकली वो कड़ा संस्कार धीरे धीरे दबते 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 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारे अंदर के कड़े संस्कार समाप्त नहीं होते, कोई भी विकार समाप्त नहीं होते, लेकिन जब हम ज्ञान और योग की जो स्थिति अच्छी लगती उसकी जब नशे में जब रहते तो वो संस्कार क्या होता है, दब जाता है। जब उसकी नशा कम हो जाते है तो वो संस्कार क्या होता है, फिर दोबारा उभर आ जाता है। तो इसीलिए हमें जो अच्छा लगता है उसी स्थिति में उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की नवीनता ला करके उस जो अच्छा लगता है उसी स्थिति के पुरुषार्थ में स्थित रहने का सदा ही क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और हमें जो कड़े संस्कार है, कड़े संस्कार को जल्दी निकलने के लिए, जल्दी समाप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी विघ्नों के, कोई भी संस्कार के लंबा समय तक हम अधीन नहीं रहना है। अगर यहाँ समझो 8-8 दिन तक आप उस एक संस्कार के वशीभूत रहेंगे तो उतना ही आपके राज्य में भी यही ये हो जाएगा, लंबा समय तक आपको किसी के अधीन होना पड़ेगा। तो उसको समाप्त करने की तुरंत युक्ति क्या है? जब भी पिछले बार भी आपको कई माना बार बार वो कभी कभी बीच बीच में आता है, तो उस समय उसको उस विघ्नों को समाप्त करने के लिए आपने कौन सी युक्ति अपनाई थी? वो तुरंत जब आता है तो तुरंत वो अपनाओ, तो तुरंत समझे चार्ट रखाऊंगा या कुछ अपना प्लान चेंज किया होगा या कुछ मधुवन गए होंगे या कुछ विशेष किसी का क्लास सुनाऊंगा, तो किस स्थिति से आपका वो विघ्न बार बार खत्म हो जाता है उसको तुरंत अपनाओ, तो तुरंत वो संस्कार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी तरह हमें क्या करना है, विशेष ये आपको जो अच्छा लगता है उसी स्थिति का विशेष पुरुषार्थ करना है, तो कलक पहले अनुसार आप क्या हो जाएंगे, जल्दी अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और उसको क्या करो, उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो अच्छा लगता है उसका स्थिति, क्योंकि जैसा हमारा वर्तमान तो भविष्य तो फिक्स है कि भविष्य हम सोचते कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन हमें ब्राह्मण जीवन में भी अपने वर्तमान का लक्ष्य भी रखना है कि हमें कौन सी स्थिति के मंजिल तक पहुंचना है। जैसे भविष्य का फिक्स है वैसे वर्तमान के भी पुरुषार्थ का हमें क्या करना है, फिक्स करना है। वैसे देखा जाए तो सभी ब्राह्मण क्या हो रहे, पुरुषार्थ क्या करना है उसमें भटक रहे, क्या करना है उसका परफेक्ट उन्होंने क्या नहीं किया, डायग्राम नहीं बनाया। तो जैसे अगर आपको समझो लंदन जाना है, तो लंदन जाना है तो आप थोड़ी घर में बैठ करके सोचेंगे कि मुझे लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है। अगर दो चार मास एक साल भी अगर घर में बैठ करके केवल लंदन जाना है, लंदन जाना है सोचते रहेंगे, लंदन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो लंदन जाना है तो आपको क्या करना है, ये लंदन जाना ही आपके इमर्जी बुद्धि में होगा, तो लंदन जाने से पहले आपको चिंता रहेगी कि मेरे को यहाँ से बस स्टैंड पर कैसे जाना है, बस स्टैंड से मुझे अबू रोड कैसे जाना है, अबू रोड से मुझे अहमदाबाद कैसे जाना है, अहमदाबाद से मुझे बॉम्बे कैसे जाना है, बॉम्बे से मुझे दिल्ली कैसे जाना है, दिल्ली से फिर लंदन में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बीच बीच में हमें जैसे वो टॉपेज जैसे जैसे वो समझो अबू रोड क्रॉस किया फिर उसके बाद अहमदाबाद क्रॉस किया तो लंदन आपके नजदीक पहुंचते जाएंगे ना लंदन के। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, पुरुषार्थ में समझो आपको बिंदुरूप के स्टेशन पर पहुंचना है, बिंदुरूप बनना है। तो केवल बैठ करके मैं बिंदुरूप बनना है, बिंदुरूप बनना है, बिंदुरूप बनना है, केवल बैठ करके करेंगे तो बिंदुरूप के स्टेशन पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो बिंदुरूप के स्टेशन पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स बनाना होगा। बिंदुरूप स्टेशन पर पहुंचने के लिए आपको एक मास पर कम बोलने का स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, वो स्टेशन क्रॉस करो, उसके बाद कुछ दिन तक एकाग्र रहने का स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कुछ दिन तक आपको संकल्प कम चलाने का स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ समय तक आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो ऐसे कई स्टेशन जो बिंदुरूप के स्टेशन को नजदीक लेने वाले जो टप्पे है, उन एक एक टप्पे को क्या करो आप क्रॉस करते चलो, उस स्टेशन को क्रॉस करते चलो, तो सहज ही आपका बिंदुरूप का जो अंतिम स्टेशन है वहां तक आप पहुंच जाएंगे, वो आपके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमें जो आपको स्थिति अच्छी लगती है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बीच में कौन से स्टेशन क्रॉस करना पड़ता है, उस स्टेशन को क्रॉस करो अर्थात उनकी धारणाएं अंदर लाओ, तब आपका वो स्टेशन आएगा, तब उस बिंदुरूप स्थिति का अनुभव करेंगे। समझो आप कभी बिंदुरूप स्थिति में कभी स्थित रहते, कभी योग भट्टी रहते, या कभी ऐसा आपका योग बहुत अच्छा लगता है, उसी समय आपकी कौन सी धारणाएं होती है अंदर से, तो वही धारणा सदा के लिए आप रखो तो सदा के लिए आप उसी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो अच्छी लगती है उसी स्थिति का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना है, स्टेशन बनाना जरूरी है। उसके साथ साथ जो कड़ा संस्कार है उस कड़े संस्कार को भी निकालने के लिए भी स्टेशन बनाओ। वो संस्कार निकलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, कौन से पॉइंट्स, कौन सी स्मृतियां धारण करना पड़ता है, तो संस्कार आपके ऊपर अटैक नहीं करता, तो उसके स्टेशन भी बनाओ, उसको निकाल। तो इस तरह से हमें बहुत सूक्ष्मता से जाकर के हमें उसकी अनुभूति करने के लिए स्टेशन बनाना जरूरी है। तो इस तरह से विशेष जो आपको आज के टॉपिक में जो कहा, तो जो हमारे अंदर जो मेन संस्कार है ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, जो वर्तमान समय जो मैं अपना पर्सनल जो कर रहा हूँ जो रिसर्च है वही आपको अभी बताया। तो ऐसा ही अगर आप भी पुरुषार्थ करेंगे तो आपके दो बातों का पुरुषार्थ, तो जो स्थिति अच्छी लगती है उसका डीप में पुरुषार्थ, और जो कड़ा संस्कार आपके इस योग मार्ग में विघ्न डालता है, उसको सदा के लिए समाप्त, तो ये दो बातों का पुरुषार्थ आपको अपने मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, डीप पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए आप अपना खुद का रिसर्च करो। अभी तक पुरुषार्थ अनुसार, अभी तक अपने जीवन अनुसार जो भी कुछ कर्म किए, जो भी कुछ विघ्न आए, उसकी स्टडी करते एकांत में बैठ करके उसको निकालो। जो मेन संस्कार है कौन सा है उसको एक डायरी में लिखो, उसको किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, पर्सनली रखो। अगर किसी को बताना भी है तो इनडायरेक्टली बता करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करो, और जो स्थिति अच्छे लगते उसके बारे में ज्ञान के पॉइंट इकट्ठा करके आप उसका भी क्या करना है, डीप पुरुषार्थ करना है। तो आपको इस वर्ष में बहुत अच्छा पुरुषार्थ में मदद मिलेगी और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और जब हमारा जो इन दो बातों का पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट लगेगी, बहुत अच्छा हम योग की अनुभूति कर सकेंगे। तो क्योंकि योग में ये दो बातें ही बहुत, मतलब दो बातों का पुरुषार्थ ये बहुत सहायक करेगा। योग में आपको जो समय विघ्न आता है उसको समाप्त करेंगे, और जो अच्छा लगता है उसका पुरुषार्थ करेंगे, तो समय से पूर्व आप क्या करेंगे, अपने स्टेशन तक पहुंच जाएंगे, योग में अनुभूति भी करेंगे। इसके लिए जो भी आपको युक्तियां बताई उस अनुसार करना, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से हमारे अंदर का जो इस युद्ध में एक अपना कड़े संस्कार को हराओ, बाकी छोटी छोटी बातें अपने आप भाग जाएंगे। क्योंकि अभी छोटी छोटी बातों को समाप्त मारने का समय नहीं, अभी रावण को, टोटल रावण को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। और समाप्त करके जो 21 पीढ़ी आ रही, अगला साल आ रहे, तो उस अगले साल में हमें क्या करना है, प्रवेश करना है, ठीक है। जय ओम शांति।